प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कर्मणैव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करना ही है, कर्मों के फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जी हां, अक्सर हम मेहनत तो खूब करते हैं पर उतनी ही दिलोजान से, उतनी ही शिद्दत से उस मेहनत के परिणाम की प्रतीक्षा भी करते हैं। उस परिणाम पर इतने आश्रित हो जाते हैं कि मनचाहा परिणाम न मिलने पर हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पर वो कहते हैं ना कि मंजिलों से भी खूबसूरत सफर होता है और खुशी तो सफर से ही मिलती है। इसलिए आप अपना कर्म करते जाइए और आपको अपने काम में ही खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। परिणामों का क्या है, उनमें कभी जीत तो कभी हार लगी रहती है। तो आज से ही ये संकल्प लें कि आपको जो करना है, जब करना है, आप वो करके ही रहेंगे बिना किसी टेंशन के रिजल्ट्स के कि क्या होगा। इसी के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल, इट्स अ न्यू डे and a new day brings new beginnings, and our program brings you the latest national and international news, metro city updates, and we'll be exploring the history of today, that is 20th August. All of that and much more coming up, so let's get started with the headlines.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सरी अनवर बिन इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। श्री इब्राहिम के सम्मान में प्रधानमंत्री आज दोपहर भोज का भी आयोजन करेंगे। इसके बाद श्री इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी प्रधानमंत्री इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। श्री इब्राहिम कल रात 3 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद दोनों पक्षों के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ हुए हैं।
India and Japan will hold 2+2 ministerial dialogue in New Delhi today. Defence Minister Rajnath Singh and External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar, Japanese Minister of Defence Kihara Minoru and Minister of Foreign Affairs Ms. Yoko Kamikawa will take part in the meeting. On the sidelines of the 2+2 dialogue, a bilateral meeting is scheduled between the Defence Minister and his Japanese counterpart. During the bilateral talks and 2+2 meeting, the ministers will review the bilateral cooperation and explore new initiatives to further strengthen the engagements between the two countries. They will also exchange views on regional and global issues of mutual interest. Defence Ministry said India and Japan share special strategic and global partnership based on the shared values of democracy, freedom and rule of law. The minister said that defense has emerged as one of the most important pillars in this relationship. Strengthened India-Japan defense partnership is vital for ensuring a free, open, inclusive and prosperous Indo-Pacific in the prevailing global environment. The meeting will further deepen defense cooperation and bring greater depth to the special strategic and global partnership between the two countries. The second India-Japan 2+2 dialogue was held in September 2022 in Japan.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव तन्मय लाल ने बताया कि ये एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड जा रहे हैं। पोलैंड में श्री मोदी वहां के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर शुक्रवार को यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा भी ऐतिहासिक है क्योंकि राजनयिक संबंध स्थापित होने के 30 से अधिक वर्षों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है।
The notification for the first phase of assembly elections in Jammu and Kashmir will be issued today. 24 assembly constituencies in Anantnag, Shopian, Kulgam, Ramban, Kishtwar and Doda districts will go to the polls in this phase. The last date for filing nominations for this phase is 27th of August. The scrutiny of nominations will take place the next day. The last date for withdrawal of candidatures is 30th August and polling will be held on 18th September. The final electoral rolls for the assembly elections in the Union Territory are likely to be issued today, with the number of voters expected to be close to 90 lakhs. The list detailing areas and electorates will be of particular significance this time, as the boundaries of many assembly constituencies have been changed following the delimitation exercise and the increase in the number of assembly seats from 83 to 90.
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कदाचार को रोकने और निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऋणदाता लेन देन में मूलधन और ब्याज या दोनों के संदर्भ में होने वाले पूरे नुकसान को वहन करें। ऋण देने या लेने वाली इकाइयां अपनी सेवाओं को निवेश उत्पादों के रूप में प्रचारित नहीं कर सकती हैं। वे ऋणदाताओं को मूलधन और ब्याज दोनों पर होने वाले नुकसान की जानकारी देने के लिए जवाबदेह हैं।
Supreme Court will hear today a case related to rape and murder of a resident doctor in Kolkata recently. A three-judge bench comprising Chief Justice of India D.Y. Chandrachur and Justices J.B. Pardiwala and Manoj Mishra will hear the matter pertaining to the rape and murder of the doctor of West Bengal government run R.G. Kar Medical College and Hospital. The apex court has taken sumo to cognizance of the matter, which has shocked the country and thrown the medical fraternity in a turmoil. The case is already being heard by the Calcutta High Court, which ordered that the probe be transferred to the Central Bureau of Investigation or CBI. The case went to the High Court after the woman's parents and a few others, unhappy with the police investigation, filed a petition.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। श्री मोदी ने कहा कि पेरिस जाने वाले खिलाड़ी भारत के ध्वजवाहक की तरह जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके जीवन और उनके खेलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह यात्रा देश के लिए ही उतनी ही महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का गौरव पेरिस में खिलाड़ियों की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय इन खिलाड़ियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब एक खिलाड़ी किसी खेल के इतने बड़े मंच पर पहुंचता है, तब वह उसके साहस, समर्पण और त्याग को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पैरा एथलीट की बात होती है, तब सच्चाई और चुनौती और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पैरा एथलीट इस मुकाम पर पहुंचकर ये दर्शाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वे कितने सशक्त हैं। पेरिस पैरालंपिक इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इस बार पैरालंपिक में भारत अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। उन्होंने बताया कि पैरालंपिक 2024 में 84 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने न केवल खेलों में उत्कृष्टता दिखाई है, बल्कि ये भी सिद्ध किया है कि इच्छा, समर्पण और मेहनत को कोई भी बाधा पार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि पैरालंपिक में इस बार 50% से ज्यादा भारतीय खिलाड़ी पहली बार भाग ले रहे हैं। श्री मांडविया ने बताया कि ये गर्व की बात है कि भारतीय खिलाड़ियों ने 2022 में टोक्यो ओलंपिक में पैरालंपिक में 19 पद और एशियन पैरा खेलों में शानदार प्रदर्शन किया और इतिहास रच दिया। और अब आज सवेरे से जुड़ी प्रमुख महानगरों की प्रमुख खबरें चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरों के साथ हैं शगुन।
Well, we'll begin the segment with Chennai. Tamil Nadu Health Minister M. Subramaniam released the rank list for MBBS and BDS admissions. Cutoffs might increase this year as students' performance in NEET 2024 was better compared to NEET 2023. The first round of online counselling for government quota seats in state-run medical colleges and all seats in self-financing medical colleges and private medical colleges will begin on August 21. The following day, offline counselling will be held at the government multi-speciality hospital in Omandurar for admission to seats under the 7.5% 10% government quota and special categories such as sportspersons, people with disabilities and children of defence personnel. Now let's focus on Bengaluru. The Jawaharlal Nehru Planetarium, JNP, in Bengaluru is organizing a series of events to celebrate National Space Day on the 23rd of this month. The events will take place at the JNP Bengaluru premises and are open to the public with free entry. Students from Standard 7 to 10 can participate in painting and pick and speak competitions, while those in Standard 7 to 12 can engage in a jigsaw puzzle activity. Additionally, there will be a separate jigsaw puzzle activity for students in Standards 4 to 6. A walk-in quiz will be open to everyone aged 12 and above. Public lectures will also be a part of the celebration, including Moon, a tool for physics lessons at 12:30 p.m. and the exciting journey of Chandrayaan at 3:45 p.m. So a lot to focus on in Bengaluru. Lots of upcoming events. Now let's focus on and turn our attention to Hyderabad. In Telangana, heavy rain lashed several parts of Hyderabad and also other parts of the state from the wee hours. The Hyderabad Meteorological Centre has issued an orange alert of heavy rain along with thunderstorms and lightning for various districts of the state for the next 4 days. For Hyderabad, the weather department has forecast light to moderate rainfall or thunder showers accompanied by gusty winds. During the past 24 hours, Hazar in Jogulamba Gadwal district recorded the highest rainfall of 116.5 mm till 5 a.m. this morning. Several parts of Nalgonda, Suripet, Nizamabad, Vanaparthi, Yadadri, Siddipet, Nirmal districts have recorded heavy rainfall since yesterday. As per the IMD records, Telangana has received normal rainfall during the current southwest monsoon. The state received 556.7 mm rainfall on an average against the normal rainfall of 489.6 mm. So these were the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. So Akashita, what are the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata?
तो आइए अब जानते हैं दिल्ली मुंबई और कोलकाता की खबरें. सबसे पहले दिल्ली की खबरें. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने कल रक्त वाहिकाओं में कमजोरी के कारण मस्तिष्क में होने वाली बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म की जागरूकता को लेकर एक सत्र का आयोजन किया. इस सत्र में अमरीका के बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर न्यूरोसर्जन जैक्स मोरेट ने इस बीमारी के कारणों और उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वोवेन एंड्रोब्रिज तकनीक के माध्यम से सेरेब्रल एन्यूरिज्म का आसानी से इलाज किया जा सकता है, जो पुरानी विधि की तुलना में काफी आधुनिक है. वहीं दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के नाम पर दिल्ली सरकार शहर की जनता पर अतिरिक्त भार डालने जा रही है. श्री बिधूड़ी का कहना है कि वर्तमान में सरकार पहले ही बिजली बिलों के माध्यम से 7% टैक्स सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर वसूल रही है और अब उन्हें कैशलेस इलाज देने के नाम पर बिजली बिलों में अन्य टैक्स जुड़ने की संभावना है. उत्तर रेलवे ने बताया है कि नई दिल्ली से आगरा छावनी के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी संख्या 14212 और 14211 के परिचालन में अस्थायी तौर पर बदलाव किए गए हैं. ये रेलगाड़ी गुरूवार तक केवल ग्वालियर तक ही चलेगी. और अब मुंबई की खबरें. बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी के रेजिडेंट डॉक्टरों ने घोषणा की है कि जब तक सुरक्षा और केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन की उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी. महिला स्वास्थ्य कर्मियों के असुरक्षित मानकों के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कल मुंबई के आजाद मैदान में एक मार्च भी निकाला. रक्षाबंधन के मौके पर प्रदर्शनकारी रेजिडेंट डॉक्टर हमारी बहन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और विरोध को जनता का भी समर्थन मिल रहा है. मुंबई के सायन अस्पताल में नशे में धुत मरीजों और उनके रिश्तेदारों द्वारा एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर हमला किए जाने के एक दिन बाद बीएमसी एमआरडी द्वारा एक प्रेस बयान जारी किया गया. इस पर एक संस्थागत एफआईआर दर्ज की गई. विरोध कर रहे डॉक्टरों ने कहा है कि अगर सायन अस्पताल हमले की घटना में अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. वहीं मध्य रेलवे मुंबई मंडल ने महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्य रेलवे ने महिला डिब्बों की देखभाल के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर महिला रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की तैनाती कर दी है। मध्य रेलवे ने कहा है कि आपात स्थिति के दौरान तत्काल संचार और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मुंबई लोकल ट्रेनों के 645 महिला डिब्बों में एक इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। मुंबई डिवीजन के 80 रेलवे स्टेशनों पर संवेदनशील स्थानों पर कुल 3,817 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे स्टेशनों पर उपनगरीय और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के सभी महिला कोचों को कवर करते हैं। महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उपनगरीय रेक के 693 महिला कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महिला यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपनगरीय स्टेशनों पर 7 अपराध रोकथाम और जांच दस्ते की टीमें भी तैनात की गई हैं। शगुन, ये कितनी अच्छी खबर है कि जो है ट्रेनों में महिलाओं के लिए ये जो चाक चौबंद किया गया है सुरक्षा का, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो महिला डिब्बे होते हैं उसमें अक्सर हमको ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि सुरक्षा की थोड़ी सी ढिलाई रहती है, कमी रहती है और हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो ऐसा हो जाने से कितना आसान हो जाएगा।
दिस इज अ ग्रेट स्टेप।
और अब कोलकाता से जुड़ी खबरें। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और अन्य सभी ट्रेड यूनियन आज विरोध रैली में भाग लेंगे और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करेंगे। आज ही कर मामला सभी ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन सीटू के बैनर तले मार्च करेंगे। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के राज्य सचिव आनंद साहू ने बताया कि विरोध मार्च कोलकाता के एस्प्लेनेड के लेनिन प्रतिमा से शुरू होकर कॉलेज स्ट्रीट तक होगा और ये विरोध प्रदर्शन आज ही कर मामला जो अस्पताल है उसके तहत किया जा रहा है। और अब आइए जानते हैं महानगरों के मौसम का हाल। आइए सबसे पहले जानते हैं दिल्ली के मौसम का हाल। आज दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहने का अनुमान है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और कोलकाता में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की छींटों के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 30 और 27 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं।
Now talking about Chennai, which is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 29 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और आइए अब जानते हैं इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ। आज के दिन ही 1828 में राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन कोलकाता में संपन्न हुआ।
इन द ईयर 1885 फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड।
और आज के दिन ही 1897 में रोनाल्ड रॉस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम के दौरान मलेरिया के कारक एनफिलीज मच्छर की पहचान की।
In the year 1921, the Mopla Revolt, one of the important uprisings of India, was started at Kerala.
और आज के दिन ही 1949 में यूरोपीय देश हंगरी में संविधान को अंगीकार किया गया।
In 1955, Jawaharlal Nehru broke off relations with the Portuguese after the invasion of Goa by Indian nationalists.
और आज के दिन ही 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिनों के अंदर ही इस्तीफा दिया।
In 1969, Varagiri Venkatagiri was elected president and G.S. Pathak was elected as the vice president of India.
और आज के दिन ही 1994 में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा क्यूबा के शरणार्थियों को आश्रय देने की 28 वर्ष की पुरानी नीति को समाप्त करने की घोषणा की।
In 1974, Fakhruddin Ali Ahmed was elected president of India with B.D. Jatti as vice president.
और आज के दिन ही 1991 में उत्तरी यूरोपीय देश इस्तोनिया ने तत्कालीन सोवियत रूस संघ से अलग होने की घोषणा की।
In 1995, 305 people were killed and 345 were injured in a collision between Purushottam Express and Kalindi Express at Murlinagar near Firozabad, in Uttar Pradesh. And in the year 1997, Lata Mangeshkar received the 5th Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award from the President.
और अब आइए बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है जयंती, पुण्यतिथि या जन्मदिन. योगः कर्मसु कौशलम्, आज बी के एस आयंगर की पुण्यतिथि है. वे योग का दुनिया से परिचय कराने वाले प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु थे. उन्हें आधुनिक योग का जनक माना जाता है. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योग गुरुओं में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है. बीके एस आयंगर ने आयंगर योग की स्थापना की तथा इसे संपूर्ण विश्व में मशहूर बनाया. बीके एस आयंगर के अष्टांग योग की आज दुनिया भर में मान्यता है. उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. और आज ही उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती की पुण्यतिथि है. वर्ष 1930 से 1938 के बीच का समय इनके लेखक जीवन का निर्माण काल माना जाता है. और उनकी मुख्य रचनाएं हैं मन गहिरर, चाश, परजा, माटी मटाल, नववधु, मुक्ति पथे, अमृतर, संतान आदि. गोपीनाथ मोहंती को 1973 में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. बाद में 1981 में भारत सरकार द्वारा इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया.
वेल, वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग टेड पोस्ट, अमेरिकन डायरेक्टर ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन. He directed numerous episodes of television series including Rawhide, Gunsmoke and The Twilight Zone, as well as films such as Hang'em High, Beneath the Planet of the Apes and Magnum Force.
आज भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा की भी पुण्यतिथि है. वे समाज को हकीकत से रूबरू कराने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय इतिहासकारों में से एक थे. राम शरण शर्मा ऐसे पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने पुरातात्विक अनुसंधानों से प्राप्त साक्ष्यों को अपने लेखन का आधार बनाया और वैदिक और अन्य प्राचीन ग्रंथों और भाषा विज्ञान की स्थापनाओं से उसे यथासंभव संपुष्ट करने की कोशिश की. और आज ही उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती की भी पुण्यतिथि है. शगुन, तो आज कितने ढेर सारे साहित्यकारों की जी, जो right. है आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं.
राइट, टॉकिंग अबाउट अनदर नोवलिस्ट, जैकलीन सूजन. वेल, इट्स हर बर्थ एनिवर्सरी टुडे. शी इज एन अमेरिकन नोवलिस्ट एंड ऑल्सो एक्ट्रेस. हर नोवल वैली ऑफ द डोल्स इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन पब्लिशिंग हिस्ट्री. Her works, The Love Machine and Once Is Not Enough, Dolores, Yargo and Every Night Josephine are some of her works which she is known for. Today it's also the birthday of singer and songwriter Robert Plant. He was the lead singer and lyricist of the rock band Led Zeppelin from its founding in the year 1968. Since then he has had successful solo career also, and also he collaborated with other artists such as Alison Krauss. And for you listeners, we have this song, very famous song, Stairway to Heaven, to listen to.
आज हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री कुमारी नाज की जयंती है. उन्होंने सिने जगत में बतौर एक बाल कलाकार प्रवेश किया. महज 8 साल की उम्र में फिल्म रेशम में अभिनेत्री सुरैया के बचपन का रोल किया था. एक दशक से अधिक समय तक बाल कलाकार के रूप में सफल करियर के बाद नाज ने एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सुंदर ढंग से परिपक्व भूमिकाओं में बदलाव किया. उन्होंने मनमौजी, मुझे जीने दो, देखा प्यार तुम्हारा, कैसे कहूं, मजबूर, चांदी की दीवार, छैला बाबू बहू बेगम, आया सावन झूम के जैसी फिल्मों में आकर्षक अभिनय किया, जहां उन्होंने राजेश खन्ना की शारीरिक रूप से विकलांग बहन की भी भूमिका निभाई. आइए सुनते हैं उनके ये गीत और उनका ये डायलॉग.
नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है.
भाई जी, दो पैसा दे दो माई, दो सूखी रोटी खाएगा भाई जी, सुबह से अंधी है।
बस अंधी हूँ, क्या बोल रही है?
कुछ नहीं चाची, जमाने के अंधी हूँ, नहीं चाची, जन्म के अंधी हूँ।
मैं बेज़बान पंछी, मुझे छोड़ कर दीवाने, छोटी सी जान मेरी, मुझे वंश तू छुड़ा ले। तो चलो हटो जी सांवरिया ना भूलू रे, चलो हटो जी सांवरिया ना भूलू रे। तूने नदी पे मोटी कगरी तोड़ दी, तूने नदी पे मोटी कगरी तोड़ दी।
Today, we're also remembering Phyllis Diller, stand-up comedian and actress. She contributed to more than 40 films, beginning with 1961's Splendor in the Grass. She appeared in many television series, and some of her credits include Night Gallery, The Muppet Show, The Love Boat, Sybil and Boston Legal, plus 11 seasons of The Bold and the Beautiful. Her voice acting roles included the monster's wife in Mad Monster Party, the queen in The Bug's Life, Granny Neutron in The Adventures of Jimmy Neutron, Boy Genius, and Thelma Griffin in Family Guy.
बिस्तरा है ना चारपाई है, जिंदगी खूब हमने पाई है, आदमी जी रहा है मरने को, सबसे ऊपर यही सच्चाई है, कच्चे ही हो अभी त्रिलोचन तुम, धुन कहां वो संभल के आई है। आज हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री की जयंती है। वे आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी के तीन स्तंभों में से एक थे। इस त्रयी के अन्य दो स्तंभ नागार्जुन व शमशेर बहादुर सिंह थे। त्रिलोचन शास्त्री काशी की साहित्यिक परंपरा के मुरीद कवि थे। उनकी मुख्य रचनाएं हैं गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूं और मेरा घर आदि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और शलाका सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है।
टुडे इट्स ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गोस्तापाल, इंडियन फुटबॉलर। ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम एंड प्लेड ड्यूरिंग द ईयर 1920s एंड 30s ड्यूरिंग दिस पर्टिक्यूलर years. He was awarded the Padma Shri in the year 1962. His life-size statue was erected at Kolkata Maidan to honor his legacy in the year 1984. He became the first Indian footballer to have a postage stamp dedicated to him.
आज राजेंद्र कुमार पचौरी की जयंती है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। उन्हें अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल्बर्ट आर्नल्ड गोरगुनियर के साथ संयुक्त रूप से 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। उन्हें सरकार द्वारा 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया।
वेल टुडे इट्स ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साल्वाटोर क्वासिमोदो, इटालियन पोएट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। He is widely regarded as one of the most important figures in the 20th century Italian literature. His work is characterized by lyricism, simplicity and depth, often exploring themes of love, nature and the human condition. His poetry style is marked by its use of free verse and conversational tone, which gives his work a sense of intimacy and accessibility.
और आज ही नागवार रामाराव नारायण मूर्ति का भी जन्मदिन है। विश्व की अत्यंत समृद्ध सॉफ्टवेयर कंपनियां इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के मालिक और संस्थापक हैं वे, और उन्होंने इस कंपनी की स्थापना 1981 में अपने 6 मित्रों के साथ मिलकर की थी, और उन्हें तो सभी जानते हैं शगुन, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ लाइक नारायण मूर्ति,
राइट
है ना?
राइट
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, आवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।